नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकोबारी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। मरीना पार्क स्थित जल क्रीड़ा परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जहाज रानी सेवा निदेशालय ने घोषित यात्रा कार्यक्रमों में संशोधन किया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं, जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। पाई गई समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से कल निकोबारी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति, परंपरा और संगीत को दर्शाया गया। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति तथा आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि और टैगोर राजकीय शिक्षण संस्थान की प्राचार्या डॉ. मंजुलता राव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि आज की चकाचौंध में भी आकाशवाणी ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है।
आकाशवाणी का जो मूल मंत्र है, बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, तो जो ये मूल मंत्र है ये 4 शब्दों से बना है, लेकिन इस 4 शब्दों में इतनी गंभीरता है, इतनी व्यापकता है, सार्वभौमिकता है और लोकप्रियता भी बोल सकते हैं कि सब चीजों को ये सम्मानित करता है और इन सब चीजें, ये सारी चीजों को मतलब अपने आप में वो शब्द, तो अगर हम निबंध लिखना शुरू करें तो 10 पेज का निबंध भी छोटा पड़ जाएगा। पीछे की अगर बात छोड़ दें तो अभी वर्तमान में अगर हम 10-15 साल का अपना इतिहास देखें तो बहुत सारे किसान संस्थाएं हैं एंड बड़ी सारी चकाचौंध की दुनिया आ रही है, उसमें उस चकाचौंध की दुनिया में आकाशवाणी ने अपने आप को बचा के रखा और न केवल बचा के रखा, अपने आप को व्यापक तौर पर फैला के रखा।
कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप महानिदेशक सी सुब्बा राव, आकाशवाणी के उप निदेशक अभियांत्रिकी डी नरसिम्हा राव, सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि और मीडियाकर्मी उपस्थित थे। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर द्वीप समूह में रहने वाले सिक्किमी समुदाय के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने 1975 में भारतीय संघ में शामिल होने के बाद से इस राज्य ने जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, शिक्षा और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस वर्ष सिक्किम स्थापना दिवस का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अटूट भावना की याद दिलाता है जो राष्ट्र की एकता का उत्सव है। उपराज्यपाल ने कामना की है कि सिक्किम के लोग शांति, प्रगति और खुशहाली के साथ निरंतर समृद्ध होते रहें। ये राज्य एक मजबूत, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण को और सुदृढ़ बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है श्रद्धांजलि समारोह और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मरीना पार्क स्थित जल क्रीड़ा परिसर में अबरडीन युद्ध स्मारक पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह 9 बजे आयोजित इस समारोह में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिन्होंने वर्ष 1859 में लड़ी गई लड़ाई के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रशासनिक कारणों के चलते जहाजरानी सेवा निदेशालय ने घोषित यात्रा कार्यक्रमों में संशोधन किया है। MV भारत सीमा के स्थान पर अब MV सेंटिनल लिटिल अंडमान के लिए 22 मई को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा अगले दिन सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। उधर MV सेंटिनल के स्थान पर MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 23 मई को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा अगले दिन दोपहर 2 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए वापसी यात्रा करेगा। जिन यात्रियों ने इन दोनों जहाजों की यात्रा की टिकटें ली थी वे उसी टिकट पर इन जहाजों से यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार खराब मौसम को देखते हुए जहाज सिंधु अपनी निर्धारित यात्रा के दौरान कचार बंदरगाह पर नहीं रुकेगा। संशोधित समय सारणी के अनुसार अब ये जहाज 29 मई को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौड़ी होते हुए कैंबल बे के लिए रवाना होगा और 21 मई को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। इस दौरान कमोटा से कचाल जाने वाले यात्रियों की आवाजाही के लिए MV लॉन्ग आइलैंड की सेवा उपलब्ध रहेगी। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने आम जनता और पर्यटकों से परामर्श जारी कर कहा है कि विभाग मौसम की स्थिति को देखते हुए मुख्य भूमि, अंतरद्वीपीय और फोरशोर सेक्टर के जहाजों की सेवाएं कभी भी स्थगित या रद्द कर सकता है, जिससे चैथम बम्बू फ्लैट, डंडस पॉइंट, होप टाउन, फिनिक्स बे और अन्य बाहरी क्षेत्रों के बीच संचालित हार्बर बाहर फेरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से मौसम के अनुरूप अपनी यात्राएं सुनिश्चित करने को कहा है। सांसद विष्णुपद रे ने हाल ही में संचार मंत्री के समक्ष शहीद द्वीप तक सीधी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी बिछाने का अनुरोध किया था ताकि निवासियों को सुलभ डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। सांसद के अनुरोध का जवाब देते हुए संचार मंत्री ने हाल ही में नॉर्थवे से शहीद द्वीप तक एक नया उच्च क्षमता वाला कनेक्टिविटी लिंक शुरू किया है। इससे नेटवर्क की स्थिरता में काफी सुधार हुआ है और द्वीप के लिए समग्र बैंडविड्थ की उपलब्धता बढ़ी है। इसे देखते हुए शेष हिस्सों तक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य इस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल और दूर संचार कनेक्टिविटी को मजबूत करना और उसका विस्तार करना है। टैगोर राजकीय शिक्षण संस्थान की ओर से मॉडल और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदर्शन पर एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन समग्र शिक्षा केंद्र की निदेशक सुमिता मोल एस ने किया। इस दौरान उन्होंने समावेशी शिक्षा में नवीन शिक्षण विधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षकों ने दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक वैचारिक अधिगम और दैविक जीवन में कौशल में इन मॉडल की उपयोगिता को विस्तार पूर्वक समझाया। प्रदर्शनी का आयोजन CRC के विशेष शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। इस अवसर पर विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकोबारी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। मरीना पार्क स्थित जल क्रीड़ा परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने घोषित यात्रा कार्यक्रमों में संशोधन किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।